ओम शांति।
आज की कथा का शीर्षक है उचित समय की मुलाकात। एक बार महात्मा बुद्ध अपने भक्तों के बीच आध्यात्मिक उपदेश का प्रवचन कर रहे थे। उनके चेहरे से सुंदर भव्य कांति का आभास हो रहा था। तभी अचानक एक नव युवती भीड़ को चीरती हुई सबसे आगे पहुंच गई। सब आश्चर्य से उसे देखने लगे, कौन है यह? व्याख्यान देते हुए महात्मा बुद्ध के सम्मुख पहुंचने का साहस इसे कैसे हो गया? नव युवती ने बुद्ध के पास पहुंचकर अभिवादन हेतु दोनों हाथ जोड़ दिए। वह नव युवना मूर्तिमती सुंदरता थी। उसे देख सारा जन समुदाय हो गया इकट्ठा, जैसे किसी ने मंत्र के द्वारा इन्हें अचेत कर दिया हो। बुद्ध देव ने उस पर दृष्टि डालते हुए उनसे पूछा, सुंदरी आपका परिचय? नव युवती ने मधुर एवं आकर्षण वाणी में उत्तर दिया, प्रभु मैं पाटलिपुत्र की राजनर्तकी हूँ और मेरा नाम आम्रपाली है। मैं आपको अपने महल में पधारने का निमंत्रण देने आई हूँ। मैंने सुना है कि आपके द्वार पर जो भी आता है आप उसे कभी निराश नहीं करते। बुद्ध ने स्नेह सने शब्दों में उसे आश्वस्त किया, अवश्य किसी दिन समय निकालकर तुमसे मिलने तुम्हारे महल में आऊँगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। यह कहकर अपने रूप की छटा बिखरती हुई रूपवती आम्रपाली वहाँ से चली गई। वह अपने महल में बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करती रही दिनों महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक। कई वर्ष बीत गए पर बुद्ध देव उसके महल में नहीं पहुँचे, उनका कोई संदेश भी नहीं मिला। एक दिन अचानक बुद्ध को अपने आम्रपाली को दिए गए वायदे का स्मरण हो गया। बस वे उसी समय चल पड़े और आम्रपाली के महल में जा पहुँचे। महल की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां अंकित थी, आमोद प्रमोद सुख सुविधाओं से भरपूर। इंद्रलोक की अप्सराओं के छवि ग्रहों को भी मात देने वाला वह आम्रपाली का महल। बुद्ध देव महल में घूमते रहे। महल में सभी प्रकार के साज श्रृंगार के साधन थे, भोग विलास की सामग्रियां की भी कोई कमी नहीं थी, पर पूरे महल में सन्नाटा पसारा हुआ था। कोई सेवक नहीं, न कोई सेविका, कोई भी बुद्ध को दिखाई नहीं पड़ा, नहीं मिला। कोई था ही नहीं तो मिलता कैसे? बहुत देर तक घूमते रहने के बाद बुद्ध ने आवाज़ निकाली, आम्रपाली के कहाँ हो तुम? दूर किसी कक्ष से एक कमजोर सा स्वर सुनाई पड़ा, मैं यहाँ हूँ प्रभु। स्वर का अनुगमन करते हुए बुद्ध वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा आम्रपाली का शयन कक्ष भव्य श्रृंगार से सजा हुआ था। वहीं पड़ी थी दर्द से कराहती बीमार आम्रपाली, अकेली पलंग पर पड़ी अपने शरीर के घावों को सहला रही थी। उसे कोढ़ हो गया था, उसका शरीर गल रहा था और जगह जगह पीप बह रहा था। बुद्ध आम्रपाली के पास जा बैठे। उन्हें देख आम्रपाली का हृदय चित्कार कर उठा, आंखों से आंसू झरने लगे। सिसकती हुई बोली, प्रभु अब आपके आने का क्या आनंद। अब तो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी विशेष नहीं रहा। यौवन सौंदर्य आमोद प्रमोद कुछ भी तो नहीं रहा। अब तो मैं आपके किसी काम की नहीं रही। अब मैं आपका मन भी नहीं लुभा सकती। मैं आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गई। आपने आने में बहुत देर कर दी। बुद्ध के हृदय में करुणा उपज उठी। करुणा के कारण रूखे गले से उन्होंने कहा, नहीं आम्रपाली के, मैंने उचित समय पर तुमसे मुलाकात की है। आज ही तुम्हें मेरी अत्यधिक आवश्यकता है। आज ही तो तुम्हारे पास आना मेरे लिए उपयोगी है। पहले आकर के मैं क्या करता, तब तो तुम्हारा सौंदर्य सबको लुभा लेता था। तुम्हारी कृपा पाने के लिए राजकुमारों की भीड़ जमी रहती थी। अनेक सेवक सेविकाएं थी। रंग रंगेलियां करने वालों की बहुत बड़ी संख्या थी। तुम्हारे जीवन में चहल पहल थी, मुस्कान भरी और किलकारियां थी। तब तुम्हें चाहने वाले अनेक थे। तब मेरी आवश्यकता नहीं थी। आज जब तुम्हारे पास कोई नहीं है, तभी तो मैंने यहाँ आने की आवश्यकता समझी। यहाँ आने का उपयुक्त अवसर तो यही है। यह कहते हुए बुद्ध ने करुणामय स्नेह से उसके मस्तक पर हाथ फेरा, उसके घावों को धोया, साफ किया। बुद्ध की परिचर्चा से उसका कोड समाप्त हो गया। जब बुद्ध वहां से चलने लगे, वह उनके चरणों पर गिर पड़ी, बोली, प्रभु मुझे भी साथ ले चलो। बरसों पहले जिस महल में मैंने आपको आमंत्रित किया था, वहां मुझे मत रहने दो। यह कहकर वह बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ी। तो इस कथा का सार यही निकलता है कि जब सारे संसार में हम सुख वैभव साधन स्रोत में डूबे हुए रहते हैं, उस समय हमें भगवान के तरफ आस्थावान होने की और भगवान को याद करने की कोई अवस्था ही नहीं रहती कि हम उन्हीं सुखों में जैसे कि हम डूबे हुए हैं। परंतु कहा जाता है कि जब सारे संसार के सब सुख सुविधाओं के गेट और अवसर बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का द्वार सभी के लिए खुला रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब रिटायर्ड लाइफ होती है, तभी उसको रियलाइज होता है कि जीवन की सार्थकता क्या है। तो इसी प्रकार जब निश्चाय बेसहारा हो जाते हैं, उस समय ही हम सब के लिए सहारा एक आध्यात्मिक पाथ, और उसमें भी प्रभु की कृपा ही हमारे लिए सबसे बड़ा साधन होता है। उस वक्त ही हम उनके सत्य ज्ञान को अपने जीवन में परिमार्जित कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं, तभी उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो देर हुआ पर अंधेर नहीं हुआ। देर होते हुए भी अगर हम किसी क्षण में भी हम जीवन के किसी चरण में भी हम उसको अनुभूत करके अपने जीवन में परिवर्तन ला करके उससे लाभान्वित हो जाते हैं, तो उससे हमारे जीवन का कल्याण हो ही जाता है। जैसे आम्रपालिके का जीवन उनके द्वारा धन्य धन्य हो गया। तो ये इसका सार वस्तु है। ओम शांति।